कभी बाबा कहा करते थे कि संसार में कुछ मनुष्यों की, कुछ बच्चों की पालना राजा ही परिवार में होती है, किसी की साहूकार परिवार में होती है, किसी की साधारण और गरीब परिवारों में, और तुम सब बच्चों की पालना हो रही है स्वयं परमात्मा के द्वारा। कल उस पालना का एक स्वरूप फिर से हमारे सामने होगा, हम सभी अपने भाग्य में स्थित हो जाएं, श्रेष्ठ भाग्य की स्थिति में, स्मृति में। मैं बाबा का एक महावाक्य आपको याद दिला दूं, बहुत रहस्य है चार शब्दों में, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, चार शब्द हैं। जीवन का बहुत बड़ा रहस्य समा गया है इनमें, और भी आगे है, स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां समाप्त। श्रेष्ठ स्थिति के सामने परिस्थितियां कुछ भी नहीं। स्वयं भगवान ने पढ़ाया है हमें, ऐसे सुंदर रहस्य हमारे सामने रख दिए हैं कि यदि हम उन पर ध्यान दें, यदि थोड़ा सा साधनाओं पर ध्यान दें, तो हमारा जीवन परमात्म मौज में, ईश्वरीय मौज में व्यतीत होगा, और हमें स्पष्ट अनुभव रहेगा कि 21 जन्मों का ये पहला जन्म सूक्ष्म जीवन मुक्त स्थिति का, स्वर्ग के सुखों से भी कहीं बढ़कर ईश्वरीय सुखों से भरपूर होने का जीवन है। पर ये बात कहने से नहीं होगी, ये अनुभव ही कहेंगे। तो हम सभी आज इस बहुत प्रैक्टिकल पर विचार करेंगे। प्रैक्टिकल टॉपिक है ये, प्रैक्टिकल रोज के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, केवल कहने के लिए नहीं। आज से हम अपने जीवन लाइफ स्टाइल को, अपने जीवन जीने की शैली को एक नया मोड़ दें, जीवन में समस्याएं ही कम पैदा हों, पहली चीज। कुछ लोगों का जीवन जीने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, समस्याओं का विश्लेषण करने का तरीका ऐसा होता है कि वो स्वयं समस्याओं में उलझ कर रह जाते हैं, समस्याएं दिनों दिन बढ़ने लगती हैं। तो ऐसा तरीका अपनाएंगे, समस्याएं बढ़े नहीं घटे। परिस्थितियां पहले ही बहुत हैं, और आने वाला समय परिस्थितियों का जैसे कि भंडार ही होगा। पहाड़ टूटेंगे दुखों के संसार में, विनाश की घटनाएं कोई छोटी घटनाएं नहीं होंगी, बहुत विकराल स्वरूप उनका होगा। हम सभी अपने जीवन को इस तरह से जिए कि अभी से निर्विघ्न रहकर स्वयं की शक्तियां जमा हो जाएं, ताकि आने वाली भयानक परिस्थितियों को हम सहज पार कर सके। बाबा हमें साथ दे रहा है, उसका श्रेष्ठ ज्ञान का बल भी हमें साथ दे रहा है, हमारे अपने पुण्य कर्म और दुआएं भी हमें साथ देती हैं, हमारा अपना पुरुषार्थ, हमारा सच्चा साथी बनकर हमें परिस्थितियों से पार ले चलता है। हम सभी आज अपने अपने जीवन को देखते हुए विचारों में परिवर्तन करेंगे। सबसे पहली चीज, सभी ध्यान से देख लें अपने जीवन को, अपने आसपास के लोगों के जीवन को देखें। जो लोग सरल चित्त हैं, उनके जीवन में कम परिस्थितियां हैं, जो हर बात में इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, जो हर बात में भारी रहते हैं, जिनके विचार निगेटिव हैं, उनके पास समस्याएं ज्यादा हैं। आप देख सकते हैं संसार को, 100 लोगों को देख लें आप, 100 लोगों के जीवन को एनालिसिस करें, तो आपको ये बात स्पष्ट दिखाई देगी किन लोगों के जीवन में परिस्थितियां ज्यादा हैं, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो बड़े बड़े पदों पर हो, हर तरह से अच्छे परिवार हो, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में परिस्थितियां हैं ही नहीं या कम से कम हैं। तो हम एक फॉर्मूला बना लें, अपने जीवन का एक मंत्र ले लें, सरलता और साक्षी भाव हमारे जीवन को परिस्थितियों से मुक्त रखेगा। पैदा ही नहीं होंगी ज्यादा परिस्थितियां, और यदि कोई छोटी मोटी आएगी तो हम उसको ईश्वरीय शक्तियों से समाप्त करने की विधि भी जान लेंगे, तो सहज ही हम ईश्वरीय जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। ध्यान देंगे सभी सरलता और साक्षी भाव जीवन में। हम सभी कुछ बातों को जानते हैं, उनको अंडरलाइन करें, ध्यान दें उन पर। हम सभी को बाबा ने संपूर्ण सत्य ज्ञान देकर इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया, हमें आभास भी हो गया कि ये समय जो जो कुछ हमारे साथ है वो है पूर्व जन्मों के हमारे पाप और पुण्य। सबको स्पष्ट है ये बात, संसार में भी लोग इस बात को कहते हैं, तो हमें बहुत स्पष्ट है क्योंकि हमारे वापस घर जाने का समय समीप है, इसलिए हमारे पाप और पुण्य बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आते रहते हैं। पाप जब ज्यादा सामने है तो परिस्थितियां दिखाई देती हैं, पुण्य सामने है तो लाइन क्लियर दिखाई देती है, सब कुछ सहज हो जाता है। अब भी हम अपने जीवन में ये ध्यान रखेंगे, यदि पुण्य कर्मों का बल और दुआओं का बल हमारे पास होगा तो परिस्थितियों को पार करना खेल बन जाएगा। मंत्र बना ले सभी इसको अपने जीवन का। इसलिए कल मुझे जानकी दादी की सवेरे क्लास में एक लाइन बहुत अच्छी लगी, आपने नोट की हो, जो नहीं थे वो भी सुन ले। ये घड़ी है संभल कर चलने की, मैं सोचा मैं इस पर लिखूंगा भी, ये घड़ी है संभल कर चलने की। बहुत अच्छी संभाल हम अपनी भी कर सकते हैं और संभल के भी चल सकते हैं, ताकि हम पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त होते चलें। पिछले विकर्मों को नष्ट करने की बात तो हमारे सामने है ही, और अब भी पाप कर्मों से हम मुक्त रहे, सुख जो पाप कर्म होते हैं वो हमारे पास ना आए, इस पर हम ध्यान देंगे। आज की सवेरे की मुरली भी सभी के मन में गूंज रही होगी, वरदान और स्लोगन जो आज के टॉपिक से बिल्कुल डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, मैं आपको याद दिलाऊं, बुद्धि की सफाई तो सिद्धियां हाथ में, दिव्य बुद्धि की सफाई हो जाए, हमारी बुद्धि दिव्य है, ऐसे जब बुद्धि के साथ दिव्य शब्द जोड़ दिया तो सफाई की बात नहीं रहती, दिव्यता ही सबसे बड़ी सफाई है। बुद्धि की सफाई हो जाए तो बुद्धि दिव्य हो जाए, तो संपूर्ण सिद्धियां, कदम कदम की सफलता, संकल्पों की सिद्धि हमें सहज प्राप्त हो जाए। मैं आप सभी से कहूंगा, ये बहुत अच्छा भुक्ता आप करते हैं या करना चाहते हैं, वो अपनी बुद्धि की सफाई का अभियान चला दें। अभियान चलते हैं ना, सरकारें भी चलाती हैं, हम लोग अपने अपने घरों में भी चलाते हैं, वे आज सफाई करनी है। कभी कभी आपके शहरों में सफाई सप्ताह भी मना दिया जाता होगा, अभियान चलाया जाता है। हम भी एक अभियान चला दें कि बुद्धि जो हमारे पास सर्वश्रेष्ठ एक खजाना भरने का वरदान है, वरदानों को ग्रहण करने की एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, इसको हम साफ करें। जितने जिसकी बुद्धि में निगेटिविटी है, निगेटिव एनर्जी है, गंदगी है, उतनी ही समस्याएं भी ज्यादा हैं। जैसे किसी ने अपने घर में गंदगी भर ली हो, कोई रोज झाड़ू लगा के और जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो उसे थैली में भर के अपने बिस्तर के नीचे रख दे तो अनेक बीमारियां पैदा हो जाएगी। सफाई भी की लेकिन उसको उचित स्थान पे न डाल के अपने बिस्तर के नीचे रख लिया। हम सब भी विचार करें, हमने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि में जिसको दिव्य बुद्धि बनाया जा सकता है, जो हमें जन्म जन्म के लिए बहुत काम आए ऐसी बुद्धि बनाया जा सकता है, उस बुद्धि में हमने क्या भरा है। एक सूक्ष्म चीज जिस पर बहुत कम ध्यान रहता है मनुष्य का, जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, हमारे एटीट्यूड्स, हमारी बुद्धि में वैसे ही चीजों को भर देते हैं। अगर एटीट्यूड्स, अगर हमारा दृष्टिकोण निगेटिव है तो हमारी बुद्धि गंदगी का भंडार बन जाएगी। मुझे एक आत्मा का अनुभव याद आ गया, मैं डिटेल नहीं सुनाऊंगा। उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं बीता। वो एक माता है, ज्ञान में बताया उसने, उसका चित्र रियलाइज हो गया कि छोटी आयु से ही वो ये सोचती थी कि संसार में केवल मैं ही बुद्धिमान हूँ, बाकी कोई नहीं। देखो ऐसा ऐसा विचार। बड़ी होती गई, पढ़ने लगी, होशियार थी तो वो यही सोचती थी कि मेरे अलावा कोई भी बुद्धिमान नहीं है। शादी हो गई, परिवार में भी इसी संकल्प ने उसे परेशान कर दिया और दूसरों को भी। आखिर वही हुआ जो होना था, अलग हो गए। अकेली रहती है माँ बाप के साथ, माँ बाप ज्ञान में तो ये भी ज्ञान में आ गई, लेकिन अब तक 15 साल ज्ञान के बाद भी उसके अंदर से ये संकल्प नहीं गया कि बुद्धिमान केवल मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं। देखिए कितना सुंदर संकल्प है, कितना सुंदर। अब उसको रियलाइज हो गया था कि ये गलत विचार है। अब से लगभग 2 मास पहले वो मिली मेरे से, सेवा में आई थी ऊपर मधुबन में। उसने रियलाइज कर लिया था और फिर अच्छा पुरस्कार शुरू किया तो 2 मास में काफी परिवर्तन हो गया। ये गंदगी भर ली थी ना बुद्धि में, बुद्धि उसके पास बहुत अच्छी थी। जब बुद्धि उसको सफलता के शिखर पर ले जा सकती थी, उसी बुद्धि ने उसको पतन की मार्ग पर अग्रसर कर दिया। सोचो एक ही सुंदर चीज मनुष्य को आकाश में ले जाए या पाताल में। हम अपनी बुद्धि में क्या क्या भर के बैठे हैं, कहीं अहम, किसी के अवगुण, किसी का पर चिंतन, दोष दृष्टि और बहुत सारी चीजें, हम सब उन्हें जानते हैं। हमें बुद्धि में नहीं भरनी चाहिए। और जो पहले भर लिया है उसका क्या करेंगे, उसको ज्ञान के नए संकल्प भर कर समाप्त कर देना चाहिए। जैसे हम अपनी कैसेट पे नई चीज भर देते हैं तो पुरानी मिट जाती है, वैसे ही हम बुद्धि में ज्ञान का बल भरे, ज्ञान के सुंदर विचार भरे। जैसे आज की मुरली में था, मैं आज सोच रहा था, टीचर बहने बहुत बैठी है, कि जैसा रस दादी मुरली में भर रही है, आप सभी ने नोट किया होगा दादी ने मुरली आधे घंटे में ही पूरी कर दी, लेकिन कितना रस भर दिया था। जो थोड़े भी एकाग्र होकर बैठे थे उन सबके अंदर चली गई वो बातें, हम सब भी यदि मुरली में ऐसा ही रस भरने लगे तो इस मुरली पर सभी डांस करते रहेंगे। किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा कि मुरली सुनने क्यों नहीं आते, ठंड में भी लोग भागे भागे आ जाएंगे, मुरली में बहुत रस है। तो मुरली के ज्ञान के सुंदर विचार अपनी बुद्धि में भरकर हम पुराने सभी विचारों को, दृष्टिकोणों को जो हमने दोष भर लिए हैं अपने अंदर, उसको साफ करेंगे, समस्याएं कम हो जाएंगी। बहुत सूक्ष्म बात एक सभी समझ लें, सारा की मुरली में मैंने बहुत साल पहले ये बात पढ़ी सुनी थी, कईयों ने सुनी है, मैं ये क्लासेज में बहुत बताई है, उसका थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से आज देखेंगे। बाबा ने कहा था, ये बात 30 साल पहले की होगी, कि समस्याएं और कुछ नहीं कमजोर मन की रचना है। बहुत ये सुंदर डेफिनेशन है समस्याओं की, जो भगवान के सिवाय तो कोई ले ही नहीं सकता। इसको हम बिल्कुल सिंपल कर ले, हमारे मन में उठने वाले संकल्प यदि निगेटिव एनर्जी पैदा कर रहे हैं, यदि हमारे मन के कमजोर विचार हैं, बहुत ढीले विचार हैं, तो हम समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। निगेटिव एनर्जी हमारे चारों ओर बहुत है, जैसे आजकल पॉल्यूशन की चर्चा है संसार में, प्रदूषण के कारण तो संसार विनाश की ओर जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, माताएं भी जान लें, संसार में हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, इस गर्मी के बढ़ने से अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं, विनाश की ओर जा रहा है संसार, अब वैज्ञानिक बोल रहे हैं विनाश। इससे भी कहीं भयानक संसार के करोड़ों करोड़ों मनुष्यों के मन से पैदा होने वाली निगेटिव एनर्जी, गंदगी इस वातावरण में संपूर्ण रूप से व्याप्त है। हमारे मन में जैसे निगेटिव विचार उठते हैं तो निगेटिव विचार निगेटिव एनर्जी में जाकर समस्याओं को पैदा करते हैं। और हमें याद रखना चाहिए, चाहे हमारे चारों ओर कितनी भी निगेटिव एनर्जी है, रंजी ने शुरू में कहा कि बाहर जाके न जाने क्या हो जाता है, न जाने की तो बात ही नहीं है, क्या हो जाता है हम सब जानते हैं। हमें ये जानना चाहिए जो आज के स्लोगन में भी था, याद कर ले आज का स्लोगन, जिनके पास संपूर्ण परमात्म शक्तियां हैं उनकी कभी हार हो नहीं सकती। अभी पीछे मुरली में आ गया, जो मास्टर सर्व शक्तिवान के नशे में रहते हैं उनके जीवन में विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। बहुत अच्छी तरह समझने की है ये बात। बाबा की एक बहुत सुंदर और गहरी स्मृति पर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, समझने की कोशिश करेंगे सभी। हम सभी मास्टर क्रिएटर भी हैं, मास्टर क्रिएटर, मास्टर रचने वाले। हम सभी के संकल्प सुंदर शक्तिशाली पॉजिटिव संकल्पों से जो चार ओर किरणें फैलती हैं वो बहुत कुछ रचती हैं। अब चलेंगे सभी, एक ही स्वरूप में बैठेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान, सर्वातम शक्तियां ऊपर से, सर्व शक्तिवान की शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही हैं। मास्टर क्रिएटर हैं हम अपने चारों ओर, यदि बहुत अच्छे वाइब्रेशंस पैदा करते रहें तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बाहर कहीं भी रहते हुए आप ये भूलें नहीं कि हम वातावरण को बदलने की शक्ति रखते हैं। वातावरण का प्रभाव हम पर होता है, मनुष्यों का प्रभाव हम पर होता है, उनसे कहीं अधिक प्रभावशाली हम हैं यदि हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहें। यदि हम श्रेष्ठ स्मृति में हैं, यदि हम अच्छे संकल्पों में हैं, तो हमारा प्रभाव ही उन पर पड़ेगा, उनका हम पर नहीं। आप में से बहुतों को इस बात का अनुभव होगा। यदि एक मंदिर में जड़ पत्थर की इष्ट देवी चारों ओर के वातावरण को शांति में बनाए रख सकती है, तो क्या चेतन देव और देवियों से ये काम नहीं होगा? भूलना नहीं है अपनी श्रेष्ठ शक्तियों को। हम सभी के पास बहुत शक्तियां हैं। मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी रख देता हूँ, जिनसे आप परिस्थितियों पर भारी पड़ जाएं। परिस्थिति आप पर भारी नहीं, परिस्थितियों पर आप भारी हो जाएं। ऐसी संकल्प शक्ति, स्वमान की शक्ति, बाबा की याद की शक्ति हम सब अपने विकसित कर सकते हैं। याद होगा बाबा मुरली में 2-3 बार ये बात कह चुके, जो बच्चे मुझे याद करते हैं, जो मेरे आज्ञाकारी हैं, उनको बाप मदद करते ही हैं। सोचो जिन्हें भगवान मदद कर रहा हो। भक्ति में हम उसकी मदद की केवल कामना करते थे, प्रयास करते थे, स्तुति करके उससे मदद मांगते थे, और अब वो स्वयं सामने बैठकर कह रहा हो, मैं तुम्हारा मददगार हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, हमें उसका साथ लेना सीखना चाहिए। परिस्थितियाँ हमें हमारी शक्तियों को भुला देती हैं, परिस्थितियाँ ये भुला देती हैं कि तुम्हें कौन साथ दे रहा है। इसके लिए हमें कुछ करना है ताकि परिस्थितियों के वश हमारे विचार न हो जाएं। क्या करेंगे इसके लिए? एक बात जो कुछ दिनों से मैं सबके सामने रख रहा हूँ, बाबा ने भी पीछे उसके बारे में कुछ कहा, हम सभी को याद रखना है, जब हम सवेरे आँख खोलते हैं तो हमारे पहले 10 मिनट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सभी माताएं भी ध्यान दें, बाबा को याद किया, गुड मॉर्निंग की, उससे हम जुड़ गए। इसके बाद हम कुछ अच्छे विचार क्रिएट करें अपने मन में। एक बहुत सुंदर विचार आप सवेरे ही अपने को देने लगें। मैं कहूंगा कि कुछ संकल्प तो आप निश्चित कर लें, जो रोज अपने अंतर मन में भर देने हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसका अर्थ है। दूसरा संकल्प देना है बहुत सुंदर, सर्वशक्तिवान की संपूर्ण शक्तियाँ मेरे पास हैं। बहुत सुंदर संकल्प है ये, जो इसको रियलाइज करे, इस सत्य को स्वीकार करें। बहुत सुंदर विचार है ये, सत्य है। बाबा ने कह दिया है, जब से तुम मेरे बच्चे बने मैंने अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें दे दी हैं। सभी इस बात को स्वीकार करें, सवेरे उठते ही अपने को याद दिलाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं। तीसरा संकल्प भी बहुत सुंदर है, आप चाहे तो अपने घर में मोटे अक्षरों में इन्हें लिख के रख दें, परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। फिर से सुने सभी, परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। आप देखेंगे ये सवेरे के संकल्प, क्योंकि सवेरे हमारा बाह्य मन शांत होता है, ये सभी शक्तिशाली संकल्प हमारे अंतर मन में प्रिंट हो जाएंगे, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारे अंतर मन में ये शक्तिशाली संकल्प प्रिंट हो जाएंगे और अंतर मन की सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। हम एक्टिवेट करते हैं इस तरह, हम अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं इस समय। सभी ये काम रोज सवेरे करने लगे, ये भूलें नहीं कि हमारे पास परमात्म शक्तियां हैं। जितना जितना इसे याद करेंगे, परमात्म शक्तियां जागृत रहेंगी, एक्टिव रहेंगी। सभी बहुत अच्छी तरह समझें। इसके साथ मैं आप सभी को एक संकल्प और दे देता हूँ, जो संगम युग के सुंदर समय का परमानंद प्राप्त करना चाहते हो और जो ये भी चाहते हैं कि हमारा जीवन इन सभी विघ्न और परिस्थितियों से ऊपर रहे, वो अपने चित्त को शांत रखना सीख लें। जिसने अपने चित्त को शांत रखना सीख लिया, वास्तव में वही सबसे अधिक बुद्धिमान है। दिव्य बुद्धि उसी के पास है। तेज बुद्धि वाले तो परेशान रहते हैं, दिव्य बुद्धि वाले शांत रहते हैं। सभी इस बात पर विचार करेंगे, ज्ञान के बल का प्रयोग करके अपने चित्त को कैसे शांत रखा जाए। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज इसके लिए है कि अपने जीवन में कुछ चीजों को स्वीकार कर लें, स्वीकार कर लें। उसके बारे में मन में उथल पुथल नहीं, ये क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा केवल मेरे साथ ही होता है, उथल पुथल नहीं। कुछ चीजें स्वीकार कर लेने से चित्त शांत हो जाएगा। सभी अपने अपने जीवन में देख लें, किन किन बातों को हम स्वीकार कर लें तो चित्त शांत हो जाए। ठीक है ना? एक डॉक्टर सभा में बैठे हैं, डॉक्टर बहुत बड़े हैं, न्यूरोफिजिशियन है, एमडी के बाद डीएम किया हुआ है, उनका एक पैर कुछ कारण बस काट देना पड़ा। तो आप सोचो, बहुत अच्छा पद पोजीशन, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन, लेकिन एक पैर काट देना पड़ा। अब वो बार बार ये सोचकर दुखी रहे कि मेरा एक पैर कट गया, या इस सत्य को स्वीकार कर ले के कट गया तो अब एक पैर से ही जीवन का आनंद लेना है। व्हील चेयर पे रहते हैं, लेकिन जीवन का आनंद तो विचारों में है ना, टांगों में नहीं। दो टांग वाले सुखी हैं क्या सभी? तो एक टांग वाले क्यों नहीं सुखी रह सकते? सोचने की बात है। जीवन का सुख, जीवन का आनंद तो विचारों में है। अगर स्वीकार कर लिया तो जीवन सुखी, और अगर ये सोचते रहे दूसरे लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, हम बैठे हैं, दूसरे लोग बड़े आनंद में हैं, सब काम करने में स्वतंत्र हैं, हमारी एक टांग चली गई, भगवान ने क्या किया, पता नहीं हमने क्या पाप किया, तो दुख बढ़ता ही जाएगा। हर एक चित्त से विचार करे, जीवन में कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक परिवार मिला मुझे पीछे, उनको सात कन्याओं ने जन्म लिया, दोनों बहुत दुखी रहते थे। सात कन्याएं पैदा हुई, एक भी लड़का नहीं, पता नहीं हमने क्या पाप किया। अच्छे पैसे वाला परिवार, किसी दुख ने उनको बाबा के पास लाया, अब सुखी हो गए। मेरी बात हुई उनसे, मैंने कहा आप तो सबसे अधिक भाग्यवान है जिसके घर में सात लक्ष्मी हैं, कितना धनवान होगा वो व्यक्ति। पर सातों लक्ष्मियां ज्ञान में हैं, और कितना भाग्य हो गया। और असली बात तो ये कि वो सातों लक्ष्मियां इन्हें भगवान के पास ले आई नारायण बनाने के लिए, तो कितनी बड़ी बात हो गई। अब स्वीकार कर लिया, दुख समाप्त हो गया। बहुत एक सुंदर और छोटी सी बात है कि जहाँ हम हैं, जिन परिस्थितियों में हम हैं, अब गरीब हैं, संतुष्ट हो जाओ। बार बार सोचते न रहो कि पैसा होता तो ये कर लेते, सत्य ये है कि पैसा होता तो कुछ भी न कर पाते। जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जैसा आपके पास परिवार है, जो आपकी पढ़ाई है, जैसी छोटी या बड़ी नौकरी है, उसको स्वीकार करके अब ईश्वरीय आनंद की ओर बढ़े। जो कुछ है वो तो है, अब तो वो कुछ मिल गया है जो चारों युगों में केवल एक ही बार मिलता है, उसका आनंद क्यों न लिया जाए। शांत करें अपने चित्त को। कैसे कैसे शांत करेंगे, और भी कुछ चीजों पर ध्यान दें। अपनी इच्छाओं को शांत करके अपने चित्त को शांत करें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को शांत करके अपने चित्त को शांत करें, अपने क्रोध को शांत करके अपने चित्त को शांत करें, अपने अंदर की वासनाओं को शांत करके अपने चित्त को शांत किया जाए। ये साधना है। मैंने पीछे दो चार प्रयोग कराए। चित्त शांत होते ही बड़ी बड़ी परिस्थितियां शांत हो गई। ये प्रयोग है बहुत सुंदर, क्योंकि हमारे चित्त से निकली हुई शक्तिशाली एनर्जी, शक्तिशाली किरणें बहुत कुछ करने में समर्थ हैं। मैं एक बात सुनाया करता हूँ, बड़ी रास भरी बात है। वो श्रीमद् भगवत गीता में लिखी है, बाबा ने तो बता ही दी है बहुत अच्छी तरह से। वो ये है, गीता के एक श्लोक में है कि हे अर्जुन, वो योगी जिसका जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, ऐसा योगी इस संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। जिसका मन शांत है, जिसके चित्त में संकल्प शांत हो गए, क्योंकि उससे बहुत शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैलती रहती हैं निरंतर, उनसे संसार का बहुत कल्याण होता है। आने वाले समय में इस संसार को प्रकृति की ओर से आने वाली परिस्थितियों से भयानक रूप से लड़ना पड़ेगा। पांचों तत्व एक साथ प्रहार करेंगे। सबसे ज्यादा भयानक परिस्थितियां प्रकृति की ओर से आएंगी संसार में, जिन्होंने अब से ही मैं प्रकृति का मालिक हूं ये बहुत अभ्यास किया होगा। आज बाबा ने एक वरदान दिया था, आपको याद हो, संदेश में डबल राज अधिकारी, स्वराज अधिकारी और विश्व राज अधिकारी। हम प्रकृति के भी अधिकारी हैं, मालिक हैं। जिन्होंने इसका बहुत अभ्यास कर लिया, और अभ्यास करते करते जो इस स्वरूप में स्थित हो गए कि हम प्रकृति के मालिक हैं, प्रकृति उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाएगी। प्रकृति अपने मालिकों को मदद करेगी, अपने मालिकों को सब कुछ प्रदान करेगी, कष्ट नहीं पहुंचाएगी। बहुत अच्छा ये प्रयोग सब रखेंगे अपने पास, मैं प्रकृति का मालिक हूँ। और इसकी शुरुआत यहाँ से की जाए कि मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ। क्योंकि प्रकृति का एक पहला प्रत्यक्ष स्वरूप हमारे पास है, हमारा शरीर। मैं आत्मा इस देह की, इस प्रकृति की मालिक हूँ। और ये भी सत्य है कि जब आत्मा इस देह की मालिक बन जाती है तो वो संपूर्ण प्रकृति की मालिक बन जाती है। कि संपूर्ण प्रकृति हमारे देह के पांचों तत्वों से निरंतर जुड़ी रहती है। ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष के मिलन का ही खेल है। इसलिए हम सभी प्रकृति की आपदाओं को सहज पार कर पाए, इसके लिए अभी से मैं प्रकृति का मालिक हूँ इसका अभ्यास करेंगे बहुत अच्छी तरह सवेरे ही रोज। जैसे मैंने आपको कहा, अच्छे संकल्प लाएं। तीन संकल्प मैंने बताए थे, दो और जोड़ दें। मैं विघ्न विनाशक हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी अभी बाबा ने 31 तारीख को कहा ये, रोज सवेरे अपने को याद दिलाओ। सवेरे के संकल्प हमारे जीवन में बीज की तरह काम करेंगे, सारे दिन उसका प्रभाव हम अपने जीवन पर देख सकेंगे। आप कल से शुरू करेंगे, कल के लिए मैं आपको दूसरा होमवर्क देता हूँ, लेकिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने चित्त को शांत करना है, और इसमें ज्ञान के बल का प्रयोग करते हुए हम गामा के ज्ञान को यूज करेंगे। इसलिए मुरली में बाबू ने दो इंग्लिश के शब्द बोले, नो प्रॉब्लम नो कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं। जिन्हें ड्रामा का ज्ञान है उन्हें किसी के बारे में कोई शिकायत नहीं, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। संकल्प को अपने पास लाकर देखो, जो कुछ हमारे साथ भी हो रहा है वही परम सत्य है, क्योंकि उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, उसको रोका नहीं जा सकता, वो होगा। यदि हम उसे रोकना चाहते हैं तो योग की शक्तियों को हम बहुत बढ़ाएंगे तो वो आएंगे तो जरूर, लेकिन जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। तो ड्रामा के ज्ञान का बहुत अच्छी तरह यूज करें, कम से कम 5-6-7 बातें ड्रामा की याद कर लें। मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आप स्वयं विचार करेंगे ड्रामा की कौन कौन सी बातें यूज करके अपने चित्त को शांत करें, और यही मंत्र याद रखेंगे, चित्त शांत तो परिस्थितियां शांत। शेष जो परिस्थितियां बचेंगी वो मास्टर सर्वशक्तिवान की प्रैक्टिस से। यदि आपके जीवन में कोई विशेष परिस्थितियां चल रही हो, हम सबको आदत पड़ गई है बाबा को कहा करते हैं, बाबा ये परिस्थितियां हैं आप ठीक करो, आप मदद करो, फिर शिकायत कर देते हैं भगवान की भी कि बाबा तो सुनता नहीं हमारी, उसको तो मदद कर दी हमें तो मदद करता नहीं बाबा, क्यों वो किसी को मदद कर रहा है और किसी को नहीं। ये उसमें भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव हम में है। उसकी किरणें तो समान रूप से सभी को मिल रही हैं, हम कितनी ग्रहण कर रहे हैं उस पर सारा खेल है। यदि आपके जीवन में इस समय कोई परिस्थितियां चल रही हो, परिवार में, काम धंधों में, शरीर में, कोई मन को उलझा रही हो बात, तो कल को बाबा का दिन है, परसों से दो बातों का अच्छा अभ्यास करके देखें एक ही दिन में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्न विनाशक हूँ। जो भी अनुभव करना चाहे परसों, कल बाबा का भी बल बहुत बढ़ जाएगा, उस आनंद को साथ लेते हुए परसों सवेरे से ही अभ्यास करेंगे तो एक ही दिन में अनेक परिस्थितियां शांत हो जाएंगी और ये बहुत सुंदर अनुभव होंगे अपने जीवन के। दूसरा एक प्रयोग, बाबा को यूज करना, ये एक अपने में बहुत सुंदर टॉपिक है। बाबा ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हारा हूँ मुझे यूज करो। हमने स्वयं बाबा की अब से 7-8 साल पहले जन सरोवर में ये संदेश आया था बहुत सुंदर। दूसरी बार जब संदेश आया तो वो पहले संदेश से भी अति सुंदर था। सुन ले आप उसके शब्द। बाप कहता है बच्चे बाप को यूज करो, लेकिन जब बाबा देखते हैं कि ये बच्चे हजार भुजा वाले को छोड़कर दो भुजा वालों के पास जा रहे हैं तो सोचते हैं अब इनके लिए क्या करें। तीसरी लाइन बहुत सुंदर थी, बाप तो इंतजार करते हैं कब बच्चे मुझे यूज करें। सभी बातों के रहस्य को सभी समझ लें, हम उसके साथ इतना अपनापन बढ़ा दें, वो मेरा है, यूज हम उसे ही कर सकते हैं ना जो हमारा अपना हो। हम उसे भगवान कहकर यूज नहीं कर सकते, वो मेरा है, मेरा बाबा है। जिसमें ऐसा बहुत गहरा अपनापन, ये नाता बाबा से जोड़ा होगा, वो बाबा को सहज यूज कर सकेंगे। बाबा उनके कैसे ही उनके काम सिद्ध करेंगे। सभी बाबा से गहरा नाता जोड़े, वो मेरा है। एक छोटा सा शब्द है ये, हजारों बार सबने सुना है मेरा बाबा, लेकिन इसको इस तरह गहन फीलिंग में लाएंगे, जो भगवान है वो मेरा है, अपनापन हो जाए। वो मेरा है, मेरे लिए है और मुझे साथ दे रहा है। तीन लाइन याद करें आप, वो मेरा है, मेरे लिए है और मुझे साथ दे रहा है। साथ है, बहुत बल है इन महावाक्यों में। फिर उसको यूज करें, उसको अधिकार से कहें, इस अपनेपन से कहें कि बाबा ये करो, फिर देखो परिणाम, बहुत सुंदर परिणाम हमें प्राप्त होंगे। ऐसे अपने चित्त को शांत रखते हुए, अपनी शक्तियों को पहचान कर, हम इन सभी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो। सब पर हम हावी हो सकते हैं अपनी शक्तियों को पहचानते हुए। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सब अपने अंतर चित्त में समा लें, समातम शक्तियाँ मेरे पास हैं। रोज सवेरे और रात को और कम से कम 1-2 बार दिन में, जब आप घर से काम पर चलते हैं वापस आते हैं, माताएं घर में भोजन बनाती हैं, तब इस बात को याद करके देखें, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। कितने शक्तिशाली हो गए हम, यहाँ किसी मनुष्य के पास किसी मनुष्य की शक्ति काम कर रही हो कि भाई फलाना चीफ मिनिस्टर हमारे साथ है, अमित शाह हमारा अपना आदमी है, तो मनुष्य कितने गर्व से रहता है, निश्चिंत भी रहता है। और जिनका स्वयं भगवान अपना हो गया हो और वो साथ दे रहा हो, तो हमें कितना निश्चिंत होना चाहिए। इस तरह हम अपनी परिस्थितियों को लाइट करेंगे, कितना स्वयं संरक्षित रहेंगे और साक्षीपन का अभ्यास करेंगे। फिर से पहली दोनों बातें आपके सामने, सरल चित्त और साक्षी भाव। तो परिस्थितियां बाबा के शब्द याद दिला देते हैं हम आपको। जो बच्चे साक्षीपन की सीट पर सेट रहते हैं, परिस्थितियां इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाती हैं। बड़ा राज है साक्षीपन की सीट के नीचे परिस्थितियां दबकर नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि एक सूक्ष्म सी बात है, आपके सामने कोई परिस्थितियां हैं, आप उसके बारे में ज्यादा चिंतन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, देखो क्या होता है। ध्यान से सुनेंगे सभी, हमारी शक्तियां हमारे चिंतन के द्वारा परिस्थितियों को जा रही हैं, परिस्थितियों को शक्तिशाली बना रही हैं। हम कमजोर हो रहे हैं, हमारी अपनी शक्तियां परिस्थितियों को जाकर उन्हें शक्तियां दे रही हैं। जितना हम कम चिंता करेंगे उनकी, साक्षी हो जाएंगे, बाबा को समर्पित कर देंगे, उतना हमारी शक्तियां केंद्रित हो जाएंगी और परिस्थितियों की शक्तियां निर्बल पड़ जाएंगी। परिस्थितियों के लिए अंतिम एक बात आपके सामने, हमारा ये जीवन ही एक परीक्षा है, हमें याद रखना है। परिस्थितियां पेपर्स के रूप में हमारे जीवन में आ रही हैं, परीक्षाओं के रूप में आती हैं, हमें उनमें पूरे नंबर लेने हैं, फुल पास होना है। दो संकल्प कर लेंगे, परिस्थितियां तो आएंगी और चली जाएंगी, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। परिस्थितियां तो आज हैं कल नहीं रहेंगी, मुझे संकल्प शक्ति को नष्ट नहीं करना है। ये हमारे खजाने हैं दोनों, स्थिति संकल्प शक्ति बहुत बड़ी चीज हो गई, इन्हें हमें नष्ट नहीं करना है। तो जीवन में आने वाली परीक्षाओं में हम फुल पास होंगे, परीक्षा अधिक नंबर लेंगे और इस जीवन को भी एंजॉय करेंगे। कल हमारे सामने बाबा आ रहे हैं, हम सभी अब से ही उनका आह्वान करेंगे और कल शांतिवन को क्या बनाएंगे, सभी शांति धाम। बोलो माताएं तैयार हैं इसके लिए? कैसा लगे देखने वालों को, ये मनुष्य लोक नहीं है, यहाँ तो कहीं आत्माओं के लोक में हम भूल से आ गए हैं। कल मुख से भी मौन, कितनी बात करनी है तो बाबा से करनी है। रोज मनुष्यों से बात करते हैं, कल केवल बाबा से प्यार भरी बातें करनी है, उसको अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांधकर नीचे उतारना है। ये काम माताएं भी बहुत ज्यादा करेंगी और भाई भी। माताओं को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माताओं को प्यार बहुत होता है बाबा से, भाइयों को भी होता है। माताएं खुश हो रही हैं, देखो पिछली बार जब बाबा आए थे ना, तो बाबा से मिलने के बाद बहुत सारे ग्रुप मिलते हैं, तो मैं एक प्रश्न पूछा करता हूँ कि कल भगवान कैसा लगा, तो अनेक माताओं ने उत्तर दिया, बाबा तो हमारा स्वजन था कल। क्योंकि पिछली बार बाबा का प्यार का रूप इतना जबरदस्त था कि सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि आज तो प्यार का सागर सामने बैठा है, प्यार लुटा रहा था। हम कल प्यार भरी रूरिहान करते हुए शांति वन के वातावरण को प्रभु प्रेम की तरंगों से भरपूर करेंगे। पसंद है सभी को? जिसने हमें जीवन दान दिया है, जिसने हमें सत्य राह दिखाई है, जिसने हमारी भटकन को समाप्त कर दिया है, उससे यदि हम प्यार नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? जो कदम कदम पर हमें मदद करता आया है, भक्ति में भी जिसने हमारे काम संवारे थे, जिसने हमें तीसरा नेत्र दिया, वरदानों से सजाया है, उसको हम प्यार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? यदि उसको हमारे प्यार की जरूरत नहीं, तो हमारा उससे प्यार हमारे लिए ही बड़ा आनंदकारी होगा। कल सारा दिन क्या क्या बाबा ने हमें दिया है याद करते हुए, सारे शांति वन को परमात्म प्रेम की तरंगों से ऐसा भरेंगे कि जो बाहर के लोग भी यहाँ देखने आते हैं हमें भी आभास हो कि यहाँ परमात्म प्रेम व्याप्त है। सवेरे उठते ही कैसे आँख खोलेंगे, ऊपर को देखेंगे अपनी बुद्धि से, तो ज्ञान सूर्य हम सभी के ऊपर अपनी किरणें डाल रहा है। उठते ही अभ्यास प्रारंभ करेंगे, आज परमात्म मिलन होगा, हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझेगी, बाबा हमें वरदानों से श्रृंगारेंगे, आज हमें भगवान को जी भर के देखने का अवसर मिलेगा, हम देखेंगे वो कैसे उठता है, कैसे खाता है, कैसे बोलता है, कैसे देखता है, कितना सुंदर समय होगा। इस तरह उठते ही अपने चित्त को परमात्म प्रेम से भर देंगे। कल आप संकल्प कर लेंगे आज से ही, और कोई संकल्प मन में नहीं, केवल तू। कल के लिए एक मंत्र ले लें, केवल तू, तू ही तू, बस तू ही तू, और कुछ नहीं, महाज्योति ही दिखाई दे रही है। सवेरे से ही ऐसे सुंदर अभ्यास में मगन रहते हुए हम अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बनाएंगे, ताकि सवेरे से ही हमारा मिलन होने लगे और हम हमारे साथ साथ प्यार का सागर भी हमसे मिलने के लिए खींच कर नीचे चलाए, उसको भी इंतजार होने लगे कब श्याम हो और मैं अपने प्यारे बच्चों से जाकर मिलूं। वो भी तो प्यार का सागर है ना, बाप है वो, माँ भी है, सुन रहे थे ना आज सभी, माँ भी है वो, तो माँ को कितनी इच्छा होती है अपने बच्चों का मुंह देखूं, ऐसी इच्छा कल हम उसके अंदर जागृत कर दें कि जल्दी चलूं और अपने लाडलों का मुखड़ा देखूं, ये हम सब के करने का है। कल दूसरी प्रैक्टिस, एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस करेंगे, सारा दिन हम सवेरे इस तरह शुरुआत करेंगे, याद रहेगा ना, आँख खुलते ही ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और बस वो पड़ते ही रहें, उसमें मगन रहें, हम बार बार ऊपर देखें, ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान अपनी तेजस्वी किरणें हम पर डाल रहे हैं। सारे दिन के लिए एक अभ्यास जिसमें आप मगन रहेंगे, कल क्लास तो मुरली फिर एक होगी, फिर शाम को ही होगी, और तो ज्यादा कुछ नहीं है। संकल्प करेंगे, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। इस संकल्प के साथ फिर ऊपर को देखेंगे कि बाबा ऊपर से चल दिए हैं और नीचे आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, कभी अकेले शिव बाबा और कभी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में बैठकर दोनों मेरे सामने, कभी ज्ञान सूर्य मेरी आंखों के सामने उनकी किरणें पड़ रही हैं, तो कभी बाप दादा मेरे सामने आ गए, दृष्टि दे रहे हैं, सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया है। हर घंटे में दो चार पांच बार ये अभ्यास करेंगे, सारा दिन ईश्वरीय मस्ती में बीत जाएगा और सवेरे से ही मिलन का अनुभव होने लगेगा, और बस इसके अलावा एक ही दिखाई दे और कुछ नहीं, तीसरा नेत्र ज्ञान सूर्य पर स्थिर हो जाए सवेरे से ही, तो मिलन यादगार बन जाएगा। ओम शांति। अभी सब इसी स्वरूप में बैठेंगे, ट्यून बजाएंगे भाई, ट्यून ज्ञान सूर्य शिव बाबा परम धाम से नीचे उतर रहा है, लाल लाइट कर दें, परम धाम से नीचे उतर रहे हैं ज्ञान सूर्य, सभी देखें ऊपर, अपनी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए महाज्योति नीचे उतर रही है, आकाश मंडल में उनका तेज फैल रहा है, नीचे आ रहे हैं और नीचे मेरी आंखों के सामने और उनकी समस्त किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही हैं, आत्मा में समा रही हैं।